मैं अभी गए हैं, मेरी अनुसार की कितनी खाली है। और इस्लाम कभी भी कितनी ख्वाहिशों पर वो बिल्कुल लिया रोकता है, उसका दरवाजा बंद नहीं करता, उसका रोग मुतायन करता है। अगर इंसान की जितनी ख्वाहिश है तो वो नहीं खाने को नहीं आएगा, हलाल खाने को कहेगा। नहीं खाने को कहना दरवाजा बंद करना है उसकी, उसकी जितनी ख्वाहिश का उसको दरवाजा है। और हलाल खाने को कहना उसको रास्ता बताना है कि इस रास्ते पे तुमको चलना है, ये चीज खाना है या ये चीज नहीं खाना। तो इस्लाम कितनी ख्वाहिशों के अंदर, कितनी सिफात के अंदर उन सिफात को बिल्कुल लिया फला नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता, ना खत्म करने की तालीम देता है, उनको एक रुख पे लगाता है, एक डायरेक्शन उनको देता है। उस डायरेक्शन पे लगा के रखना ही अपने आप को मुसलमान कहलाना होता है। शरीयत के अंदर भी जराफत और एंटरटेनमेंट की जो ममानात है वो है जो हद से बड़ी हुई है, हद के अंदर तो इसकी इजाजत है। मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई वाकयात जबानी और अमल ही हर तरह के सहाबा इकराम की जिंदगी में बेशुमार वाकयात हिजरत की तारीख की जमाने की सहाबा इकराम के हयात की किताबों के अंदर अगर पढ़े तो आपको बेशुमार वाकयात ऐसे मिलेंगे। तो समझा ही जा सकता है उन वाकयात से कि तकरीर सिर्फ गुनाह के अंदर ही नहीं होती है, इंजॉयमेंट वो सिर्फ गुनाह के अंदर ही नहीं होती है, अपनी खुशी अल्लाह को नाराज करके ही नहीं मनाई जा सकती, अल्लाह को खुश रखने भी मनाई जा सकती। और वाकयात सीरत के बाद सहाबा के दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक जनाजे से वापस अपने घर तशरीफ लाए,
ऐसा बोलने का
एक और सहाबी आकर आपकी मस्जिद में बैठे, हुजूर ने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी मामू की बहन तुम्हें क्या रखती है। एक तो हुजूर की तरफ से सवाल गया और दूसरे अनएक्सपेक्टेड उनको धमको नहीं थी, वो परेशान हो गए। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने किया। तो इस तरह से मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ में ज़राफ़त के मामले और मुकालमे किया करते थे। अमली तौर पर भी बात बात गया बहुत दिलचस्प है। एक दफा हज़रत अबू को महंगी पीठ पर सवार, तो बैठना काफी मुश्किल होता है, जिनमें कसी हो तो बिल्कुल भी भीड़ आ जाती है, बैठने के लिए आसानी होती है। महंगी पीठ पर सवार ऐसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि आ जाओ सवार हो जाओ। ऐसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े भारी बदन के थे, वो उछल कर उस पर बैठने गए और हुज़ूर का उन्होंने सहारा लिया, तो वो खुद तो गिरे साथ में हुज़ूर को भी नीचे ले आए। आप अगले सलाम नीचे आए और दोनों की तरह हड्डी निकल गई। दोबारा फिर कोशिश की, हुजूर पहले सवार हो गए, फिर उसके बाद में ऐसे उम्र में सवार हो जाए, उम्र ने दोबारा फिर कोशिश की, फिर ही वहां पर भेजा है। तीसरी दफा उठकर हजन ने करवाया कि सवार हो, सुनूंगा इसकी बात अपनी बार माल करवाए, ऐसा लोग इस दफा भी मेरा तो गया बैठो। उसी ने कहा कि नहीं सवार हो जाओ, तो तीसरी दफा फिर उनके लिए उसे अंदर जो शराब भी करोगे उनके बैठा आदान हो गया। एक और शराबी थे दुनिया से, वो अकेला उस दफा से लुमा हो रही वसलम एक रस्ते के अंदर खाने में अपने चमड़े के तस्वीर पर मार गए। वो साहबी भी हाथ वहीं कहीं उनका भी खेमा लगा हुआ था, डेरा लगा हुआ था, उस खेमे के करीब कुछ और से बातें करती बैठी थी। इन साहबी को उन लोगों की बातें बड़ी इंटरेस्ट मालूम हुई, तो उनके करीब बैठ गए जाकर, उनमें उनके करीब बैठ गए कि उनकी बातें सुन सकें दिलचस्पी के लिए, दिल बहलाने के लिए। मिर्फा वसलम अपने खेमे से बाहर तस्वीर लाए, देखा कि करीब बैठे हुए, तो पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह मेरा एक सर्कस बहुत गुम हो गया। चले गए, फिर उनके बाद वो हुजूर के पीछे पीछे चले कि हुजूर यहाँ पे आते हैं, आप पता है हाजत के लिए अपनी जरूरत से पानी होने के लिए है, ये हुजूर की मिसालों की है काफी देर पानी खा के रखे। वापस जब आते हुए हुजूर ने उनसे पूछा कि अब आपकी लगभग सर्कस कौन सा क्या हुआ है। हुजूर को भी पता है कि वाकई कुछ और है, ये कहीं कुछ और रहा। हुजूर ने पूछा उनसे तुम्हारे सर्कस कौन सा क्या हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जब कभी उनसे मुलाकात होती तो हुजूर पसंद उनसे ये पूछते थे कि अब अब्दुल्लाह सर्कस कौन सा हुआ क्या। एक दफा मस्जिद नबवी में वो नमाज पढ़े और उनको क्योंकि बार बार हुजूर से हुजूर का सामना हो रहा था और हुजूर का मतलब उनसे जब भी मुलाकात होती थी उनसे उनका विवाह फरमाते थे उनकी सराफत के लिए और इखलाफ तरबियत के लिए, तो अब उनसे दिला का शर्म आने लगी कि उनसे बड़ी गलती हुई। तो मस्जिद नबवी में नबी आते थे तो कोशिश ये करते थे कि हुजूर का सामना हो ताकि मेरे सवाल की शर्म ना बर्दाश्त करो, सवाल का सामना मुझे ना हो। तो एक दफा नमाज पढ़ने खड़े हो गए, हुजूर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कनेक्शन से देख लिया कि हुजूर गुजर रहे और हुजूर से रुक गए ठहर गए। तो हुजूर के रुकने की वजह से उन साहबी ने अपनी नमाज लंबी कर दी। आप अभी तरह को सलाम ने इशारा फरमाया जितना चाहे नमाज में आज तो तुझे मिल के जाऊंगा। ये साहबा की नदी की इजाफत के इंटरटेनमेंट के वाकत है, इसके अंदर इतना होता है पाई जाती बात होते हैं, मुस्लिम को भी मालूम को भी मालूम। एक गुर्दों में खिलाया, उन्होंने भी उनको बाकी तरह शराब अजमत की निगाह से देखते थे, उनको मार देकर पुकारते थे। वो आई और कहने लगी कि मुझे एक ऊंट की जरूरत है। साहब अली सलाम ने कहा था कि मेरे पास ऊंटने का बच्चा है, मैं उठने का बच्चा लेकर क्या करूंगी। उन्होंने कहा कि दोस्ती वो तो होगा तो का बच्चा ही होगा। ऐसे ये गुड़िया में आकर था, मुझे जंगल में जाने की खाइश है। मुझे पापा तो उन्होंने फरमाया था कि नहीं गुड़िया जंगल में नहीं जाती, वो रोने लगी। तो उन्होंने फरमाया कि गुड़िया बूढ़ी हालत में जंगल में नहीं जाती, वो जवान होकर के जंगल में जाती। तो उनकी उनके जहन को एक दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। तो नबूवत की जिंदगी में भी ये चीज है क्योंकि ये फितरी चीज है, तो इससे पाबंदी नहीं करा, इससे रोक उतारिया किया, इसको बंद नहीं किया, कदा बंद करने का हुक्म दिया। इसलिए इस किस्म के वाकयात रवानी और अमली हकीकतों के आपर इस्लाम की जिंदगी में मिलते हैं। मुझे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि निशानेबाजी सीखो, तीरंदाजी सीखो, घुड़सवारी सीखो, तैराकी सीखो, पैदल दौड़ सीखो। साहबा को इसकी तरबीत देते थे, बार दफा इन साहबों को अपनी मौजूदगी में खुद करवा दे, साहबा की दौड़ करवाए, घुड़सवारी करवाए, निजामबाजी करवाए, बच्चों को मश्क करवाए। उधर का मतलब वैसी बातें ये काम साहबा इस तरह दूसरा जो करवा रहे हैं वो इंटरटेनमेंट ही कैसे हुए, लेकिन उसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं है, उसमें एक मकसद भी है। पीछे निशानाबाजी सीखेंगे तो जंगों के अंदर काम आएंगे, बहादुरी की सिफत पैदा होगी। घुड़सवारी के अगर घुड़सवारी पूरे एक मजाना काम है, मजाक वाला काम है, शुजात वाला काम है। ऐसा दौड़ का जो किस्सा है, बात आ रहा है कि आज कदर तेज दौड़ते थे कि तेज रफ्तार घोड़ों से उनकी पैदल और आगे निकल जाया करते, तेज रफ्तार घोड़ों से आगे निकल जाया करते थे, तब तक उनको मशाती हो गई। शादी शुदा घोड़ों के वास्ते मुलाहबत को, मियां बीवी की आदत की तरह मोहब्बत की बातों को, एक दूसरे के बहाने परिसर नदियों और ताल्लुक को, इसको भी जराबत के हवाले से बयान किया गया कि जायज तकलीफ हो ये चीजें आती, खुशबू को किसी के किसी का हिस्सा बताया गया। शरीयत ने तकलीफ से मना नहीं किया है, तकलीफ की हदें बताई हैं उनकी, उन हदों में अपने आप को रखना भी हमारे वास्ते इंतहाई जरूरी है, बेहद जरूरी। इसके बगैर इस्लाम का दामन हमारे हाथ से छूटता चला जाएगा और बेदीनी का बेदीनी के दामन को, बेदीनी के फर्जन को हम उठाने वाले और उसको सामने वाले बन जाए। आज के माशरे में तकलीफ के नाम से जो चीज बहुत ही जो बुराई वो अच्छी बुराइयों के साथ में हमारे अंदर पाई जाती है, मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, इसी तरह से वफरत एक आदम आम है, वो है म्यूजिक का म्यूजिक की बुराई, होमोसिटी की बुराई। म्यूजिक का एक हरत जो है इसका हराम होना है, कुरान शरीफ की आयत से भी साबित है और 130 से जायद हदीसें उसकी हुरमत को बता इसके अंदर वही आई है, किसी में उसके असर को बताया गया है, किसी में जर्मन की वाड़ी सुनाई गई है, किसी में उसका नुकसान बताया गया है, किसी में उसका शैतानी हरकत होना बताया गया है। और इसी तरह से किस कदर अफलत आम है, इस कदर अफलत आम है कि घरों के अंदर तो ये चीज है ही, घर के हर कोने में ये चीज है ही, बाजारों के अंदर ये चीज है ही, मसाजिद मदारिस मराकिज इस्लामिया तक इनसे महमूद नहीं, जाहिल तो जाहिल है पर इसके लोगों को इसका होश नहीं। उफाज किराम, उलमाए किराम, मुफ्तिया ने इकराम सब के सब इसके अंदर पड़े हुए हैं, नाचोरी तौर पर वो उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। यूट्यूब का जो इस्तेमाल आम हो गया, वीडियो का जो इस्तेमाल आम हो गया, इसके बाद से फिर म्यूजिक से बचना इंसान के लिए आसान कैसे रहेगा। ये तो वो है जो आदमी के इख्तियार में है अपने आप को बचाना, आप चाहें तो इन चीजों का इस्तेमाल रोक कर अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं। और एक चीज तो वो है कि आपके इख्तियार में नहीं है, कहीं बाजार को चले गए और मॉल के अंदर वो म्यूजिक लगा हुआ है, शॉप के अंदर वो म्यूजिक लगा हुआ है, दुकानों के अंदर म्यूजिक लगा हुआ है, अब वो तो कानों में पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो सुनना ही सुनना है, और आप उसको बंद करने की कुदरत भी नहीं रखते, तो वो तो वो है जिस पर इख्तियार हो रही है, उसकी बात हो रही है उसके किसी ऊपर बंदों पर इख्तियार है और उसकी तरफ से मामले का ये हराम काम है। और हराम गुना है कबीरा है और गुना है कबीरा तारीफ होती है जो अनामय आवाज में अगर एक अदद में भी मौजूद होगा तो बंदे को जन्म मिलेगा एक जरिया बन सकता है। जैसे घर से जमीन में पानी डालो तो सदगा उठता है, ऐसे ही गाने सुनने से म्यूजिक सुनने से निफाक दिलों के अंदर पैदा होता है। निफाक की निशानियां बताएगी बुद्धिली की आदत, झूठ की आदत, घरानी की बात, गालियां पकड़ा, खयालत करना, ये सारी निफाक की खसूसियात है। फरमाया कि जितनी आदतें होती हैं वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक के अंदर ये निशानियां होती हैं, बात करो तो झूठ बोलता है, बात करो तो झगड़ा देते झगड़ा जब झगड़ा करता है तो गालियां बोलता है, हमारा तरफ तो खयानत करता है, ये मुनाफिक की निशानियां। मौके कहते हैं ये सारी बातें पाई जाती हैं। हम समझते हैं कि हादिस का आपस में जोड़ नहीं है, उनके मजामीन का आपस में रब्त नहीं है। यहाँ ये चीजें फैलती हैं, दिलों में उतरती हैं, तब जाके उसकी बातें बाहर आती हैं। जब म्यूजिक दिल के अंदर गया तो फिर वो दूसरी शक्ल में गालियों की शक्ल में बाहर आया, फिर वो खयानत की शक्ल में बाहर आया, फिर वो बदयामी की शक्ल में बाहर आए, फिर वो झगड़ों की शक्ल में बाहर आए, फिर वो झूठ और गुंडगिरी की शक्ल में बाहर आए। तो अंदर एक चीज जा रही है म्यूजिक की शक्ल में और उसका असर निकल रहा है इन मुख्तलिफ शक्लों से और शेपों में। अब इसको समझने को नहीं उधर पास लोग ने यही फरमाया कि बाप फिलपल तुम्हारी मित्र बाप हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता है। उधर पास की हदीस सुन भी हो आप फिलहाल तो वाकया बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने आपने सलाह में फरमा दिया कि ये निफाक का जरिया है तो जो म्यूजिक सुनेगा वो निफाक उसके अंदर उतरेगा ही उतरेगा। जानबूझ कर अगर सुनेगा तो निफाक को अपने आप को मुनाफे कराने वाला काम हुआ। लाहौबारी पर से किया लाहौबारी पर निफाक किसी बात को अपनाना हुआ, लालिमी ने किया तो गौबा की जरूरत हो पता जिसके अंदर रखे हुए हैं और फोन की रिंग बन रही है, फोन की रिंगों के अंदर भी लोग सारे किस्म के जो रिंग होते हैं उसको रखने का इस्तेमाल नहीं करते। उपाल के नाम के अंदर ये बुराई आम है, उलमा के अंदर ये बुराई आम है, आवाम में तो कुछ बोल रही है, कुछ दुखों से कुछ बोल रही है। इन बुराइयों को अपने अंदर से और अपने माहौल से और अपने चीजों से निकालने की जरूरत है। आदमी की मुसलमान की हर चीज मुसलमान होती है, मुसलमान की हर चीज मुसलमान होती है। उसके सर से लेके उसके पैर तक का आरोज़, उसके बदन का लिबास, उसके चेहरे की दाढ़ी और उसकी मूछें, उसकी पलकें, उसकी अंगूएं, उसका जिस्म, उसके अंदर की सिफात, उसके अंदर के आजा और उससे जुड़ी हर चीज, उसका बोल, उसका लाता, उसका जहाज, जो भी उसकी चीज है, उसका जवाब, उसकी दाढ़ी के सब मुसलमान होती है। ये चीजें इन चीजों का इस्लाम भी चाहता है लोग, वो असल में निशानी, वो असल में अलामत है, निशानी है कि ये आदमी जो इसका मालिक है वो मुसलमान। गाड़ियों के अंदर बाजारों में जाते हुए विकार जो नहीं सुनना चाहता उनको भी सुनवाया जा रहा, बाजारों के अंदर जाते हुए आते हुए रहते हुए वहां पर म्यूजिक आ रहा है, के ऊपर हेडफोन लगाए हुए हैं और गुलाब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बड़बड़ा तौर पर जो गुनाह किए जाते हैं, लोगों के सामने जो गुनाह किए जाते हैं, मुझे पता बड़बड़ा उन लोगों का विवाह पर निर्णय जाती है कि डट कर अल्लाह से डरे बगैर जो गुनाहगार बनते हैं उन गुनाहगारों की माफी नहीं। अल्लाह से डरे बगैर जो गुनाहगार बनते हैं जिनके गुनाह दर्जर होते हैं उन गुनाहगारों की माफी नहीं। एक एक तो बंदा गुनाह करे तो कुछ शर्मिंदगी भी पैदा। अब यहाँ तो माहौल ऐसा है कि माहौल में आ जाने की वजह से उसकी बुराई धीरे धीरे कम होते 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 खत्म होने पर आ गई। किसी का किसी का जहन उस तरफ जाने को नहीं है, किसी कोई अपने जहन को उस तरफ ले जाने को तैयार है। हालांकि ऐसी चीज थोड़ी है कि अभी तरफ से नफरत बरतने को हमारे लिए चल जाएगा दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर आखिरत की बिगड़ बेदारों तो बड़े से बड़े गुनाह से बचना आसान हो जाता है। इमाम ने लिखा है कि जब मसाइल और गुनाह ऐसे आम हो जाते हैं तब भी बचने के वास्ते कुरान करीम के अंदर उसका हल मौजूद है, उसका रास्ता मौजूद है। वैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर चले गए, वहाँ शर्मनाक हालत के अंदर है, बेचैनियों में है, तारीखियों के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनके घरों का कोई कैसे अंदाजा लगाए। वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हालत इन्हे को तुम बारे में। जब वो अंधेरियों के अंदर गिर गए थे तो अल्लाह ने उनको इस तरीके की बरकत से उनको रास्ता दिखाया है। गुनाहों के अंदर भी जब बंदे गिर जाते हैं और उनसे निकलना चाहते हैं तो इस किस्म की दुआएं उनको करामत साबित होती है। तो जो ऐसे वाकये के अंदर जाए, वालों के अंदर जाए, वालों की लगा हुआ है तो उनके दिमाग का निर्देश करना चाहिए। अपने फोनों की लीवों को साझा रखना चाहिए, उनके अंदर म्यूजिक वगैरह को गानों को स्टूडियो की लीवों को लगाने रखने से बेहतर है कि सारी किस्म के रखें, जरूरत भी पूरी हो और हम गुनाह से भी बच जाए। ये क्या जरूरी है कि हम हमें जब भी पाल आए तो साथ में गुनाह भी हमारे नामा यामा में लिखा जाए, ये कोई शौक पालने की थोड़ी है कि गुनाह करने का एक शौक है। ड्रिंक म्यूजिक के सुनने से ऐसा कौन सा फायदा पहुंचने वाला है? अंदर जो शैतान हरकत करता है वो शैतान हरकत खून में हमारे दौरान को तेज कर देंगे, ब्लड प्रेशर को तेज कर देंगे, हम समझते हैं मजा आ रहा है, वो शैतान हरकतें कर रहा है, उसको मजा समझ रहे नहीं थी। मेरे इंसान मतलब दम जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, वैसे शैतान को भी रगों में दौड़ने की चलने देने की इंसान के अंदर तसरुप करने के अलावा हमें कुदरत दे रखी। म्यूजिक सुनते हैं तो वो जोश में आता है, हम समझते हैं कि हमें मजा आ रहा है, लगभग हम सबों को मुझे भी जिन जिन चीजों से ये गुना आप होता जा रहा है जिंदगी के अंदर उन जराये को बंद करने की तौर पर बता दूंगा, हमें इसका शुरू नसीब फरमाए कि गुना अटक रहा से होता कैसे, इसे बचना कैसा चाहिए और इस किस्म के माहौल में लगा लाइना महिला को सुखाना कि मेरे को मेरे दादी में कभी चलने की तबियत पर